राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 1993 प्रातः लगभग 5 बजे दिल्ली में हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात अपने प्रसंग चला और अभी हरि शरणम का ये शरणागति का साधन बहुत बढ़िया है और बहुत सुगम है और ठीक शरणागति होने उसका फल भी बहुत जल्दी मिलता है। एक प्रार्थना और एक शरणागति ये दो चीज ऐसी है तत्काल सिद्धि देती है। और शरणागति में एक बात बताई ने एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गतिन आन की शरण भगवान का ले ले तो और किसी की भी आशा तृष्णा वासना भरोसा और न होना चाहिए। एक परमात्मा ही हम शरण है उसके सिवा कोई अपना सहारा न हो। धन है संपत्ति है वैभव है कुटुंब है शरीर है विद्या है बुद्धि है योग्यता है राज्य है ऐसे किसी का और सहारा न हो अनन्य भाव से केवल भगवान का सहारा तो तत्काल काम होता है। ऐसे ही प्रार्थना से होता है परंतु प्रार्थना और शरणागति असल कम होती है। आप थोड़ा ध्यान दें परमात्म तत्व प्राप्ति की तो अभिलाषा उत्कट हो और अपने उद्योग करके देख ले जिससे हम सफल नहीं हुए तो अपने पुरुषार्थ से निराश हो जाए और परमात्मा की केवल आशा दूर हो जाए ये दो चीज होती है तब शरणागत होता आदमी। अपना उद्योग करके परिश्रम करके साधन करके और तृप्त हो जाता है मैं इसे बढ़कर नहीं कर सकता और अब शक्ति पूरी हो जाती है। शक्ति रहते हुए शरण नहीं होता आदमी उस शक्ति का भरोसा है मैं इतना जप करता हूँ इतना ध्यान कर सकता हूँ इतना अभ्यास कर सकता हूँ इतना योग कर सकता हूँ ऐसा मन भाव रहने पर शरण नहीं होता है। अपने साधन का भरोसा तो रहे नहीं बिल्कुल अपनी शक्ति से काम नहीं होता ऐसा निराश हो जाए और पारमार्थिक उन्नति की इच्छा ऐसी होगी उसके बिना मैं रह नहीं सकता उसकी अभिलाषा उत्कट हो ये दो चीज होती है तो बहुत जल्दी कल्याण होता है। आप लोग ध्यान दें एक बात बताता हूँ हम लोगों ने प्राय ऐसे समझ रखा है कि भी जैसे छोटा सा काम होता है उसमें भी बड़ा भारी परिश्रम होता है तो परमात्मा की प्राप्ति में बड़ा भारी परिश्रम होगा कि सर्वोपरि चीज है ये चीज नहीं है। परिश्रम किस बात में ज्यादा होता है जो चीज बनाई जाए अथवा चीज कैसे लाई जाए अथवा कहीं हमें जाना पड़े कहीं फोर्स करनी पड़े निर्मित करनी पड़े उसमें देरी लगती है। आप ही हैं और परमात्मा भी है और आप जहाँ हैं वहाँ भी परमात्मा है जिस समय आप हैं उस समय भी परमात्मा है और जिस देश में आप हैं उस देश में परमात्मा है जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में परमात्मा है जिस अवस्था में आप हैं उसी अवस्था में परमात्मा है। आप निर्धन हो धनवान हो विद्वान हो चाहे मूर्ख हो चाहे बिल्कुल अनजान हो कैसे ही हो परमात्मा तो उस समय है ही पूरे उसके होने में तो बाधा है नहीं। अगर किसी समय न हो किसी समय हो वो परमात्मा नहीं हो सकता कहीं और कहीं न हो परमात्मा नहीं हो सकता किसी के लिए और किसी के लिए नहीं है वो परमात्मा नहीं हो सकता किसी को मिले किसी को न मिले वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा तो सबका है और निजी है और अपना है, तो सदा नित्य निरंतर मौजूद है। उसकी प्राप्ति तो केवल उधर दृष्टि करने से ही प्राप्त हो जाती है, क्यों? वो तो है, अपनी दृष्टि नाशवान पदार्थों पर है, मन बुद्धि इंद्रिया ने अपने पकड़ा है तो नाशवान को पकड़ा है, जो उत्पत्ति होती है विनाश होता है उन चीजों को पकड़ा है। इस वास्ते उस परमात्मा तरफ से विमुख हो गए हैं, परमात्मा के सन्मुख हो जीव मोहि जब ही के जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही जब ही तब ही है, देरी का काम नहीं है। भगवान के सन्मुख जब हो जाए तो भगवान ने सन्मुख होना ऐसा नहीं, इधर भगवान ने सन्मुख हो गया इधर भगवान नहीं है विमुख हो गया, ऐसा नहीं है। सन्मुख का अर्थ नाशवान पदार्थों से बिल्कुल नफरत है, उनकी अरुचि है, उनको कोई महत्व नहीं है, उनका कोई हृदय में आदर नहीं है। सर्वथा नाशवान से विमुख होना, अपना शरीर अपनी इंद्रियां अपना मन अपनी बुद्धि मैंपन भी अपना अपना मैंपन है, ये भी प्रकृति का कार्य है। इनसे अपना संबंध न हो इसे विमुख होना है, यही परमात्मा के सम्मुख होना है। क्योंकि हम जिधर है उधर परमात्मा तो है ही, परमात्मा के सम्मुख सब है स्वतः, किंतु नाशवान चीजों को महत्व दे रखा है, हमारी दृष्टि उसे अगड़ी जाती नहीं, इस वास्ते देरी होती है, उसे दृष्टि नहीं जाती है, नहीं तो वो है मौजूद। कल एक प्रश्न आया था कि परमात्मा दिखते नहीं, तो मैंने कहा परमात्मा ही दिखते हैं, दूसरा दो नंबर में दिखता है, परंतु आप हमें दृष्टि नहीं डालते, अब वो दृष्टि डाल तो परमात्मा प्राप्ति तो तत्काल, इतनी देरी लगती है ये चुटकी में, तो ये त्रुटि काल कहता त्रुटि काल, इतने में देरी लगती, इतने से पहले प्राप्त हो जाए परमात्मा, क्योंकि वो है भीतर में परिपूर्ण है, उसकी प्राप्ति में बाधा क्या है। हम उस तरफ देखते नहीं है, हम देखते हैं नाशवान की तरफ, उत्पत्ति विनाश की तरफ ही हमारा ध्यान रहता है, ध्येय रहता है, मन बुद्धि इंद्रियां इनमें लगी रहती है, इनसे अगाड़ी पार पहुंचते नहीं, ये बाधा है। आप कृपा कर थोड़ा ध्यान दें, जैसे मेरा हाथ है, ये हाथ को आप देखते हैं तो हाथ देखते हैं, इनसे एक पहली चीज एक नंबर में और चीज देखती है, हाथ दो नंबर में दिखता है, परंतु जब तक उसकी तरफ ख्याल नहीं है तब तक हाथ दिखता है दूसरी चीज नहीं दिखती, परंतु मैं भी ख्याल करा दूं तो वो दूसरी चीज दिखेगी, हाथ पीछे दिखेगा, वो क्या है, वो है प्रकाश। ये हाथ दो नंबर में प्रकाश, एक नंबर में प्रकाश दिखता, पहले प्रकाश में हाथ दिखता है, प्रकाश नहीं हो तो हाथ की दिखने की ताकत नहीं है, नहीं दिखेगा, प्रकाश पहले दिखता है, प्रकाश पहले दिखता है, दो नंबर हाथ दिखता है, पर प्रकाश की तरफ आपकी दृष्टि नहीं है, हाथ की तरफ दृष्टि है। ऐसे संसार की दृष्टि है, पर संसार को जो प्रकाशित करने वाला है ज्ञान है, जानना मात्र है, वो जानना मात्र है, वो ही परमात्मा है, वह जानने मात्र के अंतर्गत ही संसार है, संसार के अंतर्गत जानना नहीं है, जानना ज्ञान ज्ञप्ति मात्र, जानना मात्र, जैसे प्रकाश मात्र के अंतर्गत संसार है, ऐसे जानने के अंतर्गत अनंत सृष्टि है। जानने पर आपकी दृष्टि नहीं है, जानने पर केवल प्रकाश की तो दृष्टि नहीं है, नहीं तो उस वो तो पहले दिखता है, जो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भाषता अभ्य सनातन दिव्य दीपक विश्व विश्व प्रकाशता, जो ज्योतिषा का ज्योति है, ज्योतियों का भी ज्योति है, ज्योति क्या, ये जो दिखता नहीं, ये ज्योति है, ये प्रकाश दिख रहा है, ज्योति है, तो हमारी इंद्रियां ये भी ज्योति है, नेत्र है वो ज्योति है, रूप उदगत है, काला पीला सफेद, इसको ज्योति है, कान है, नाक है, कान है, शब्द की ज्योति है, नाक है सुगंधि दुर्गंध की ज्योति, प्रकाश करता है सुगंध दुर्गंधि को, जीभ है ज्योति है, ये खट्टा है, मीठा है, चरपरा है, ऐसा वो प्रकाश करता है, जैसे आकाश प्रकाश में चीज दिखे यू स्वाद दिखता है, इसे तो ये ज्योति है, त्वचा से दिखता है ये नरम है, ये कठोर है, ये चिपचिपा है, ऐसा दिखता है करो तो ये ज्योति है, त्वचा ये ज्योति है, उस ज्योति के अंतर्गत ये दिखते हैं सब, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच इंद्रिया पांच ये ज्योति है, और मन ज्योति है, जिधर मन होगा वो दिखेगा, मन नहीं दिखेगा, जैसे आकाश बिना इस प्रकाश बिना दिखता नहीं, ऐसे मन बिना नहीं दिखेगा, जैसे आपको अभी बताया ऐसे गंगा किनारे हम बैठे थे, तो मैंने कहा आप दृष्टिता वो दिखा नहीं तो आपको नहीं दिखता कैसे, तो मैंने सुबह कहा कि अभी देखो गंगा जी का शब्द हो रहा है ना, हाँ घर हर हो रहा है, आप अभी तक सुनते थे कि ना, तो शब्द का अभाव नहीं था, कानों का भी अभाव नहीं था, अभाव क्या था, उधर दृष्टि नहीं थी, अब काम करते गंगा जी का शब्द सुनाई देगा, नहीं तो बिल्कुल कान हमारे शब्द हो रहा है पास में बैठे गंगा जी के, वो दीप सुनते ही नहीं हो, ऐसे वो परमात्मा तत्व मौजूद है, उधर दृष्टि नहीं देते आप, दृष्टि देते वो तो सबसे पहले दिखेगा, सोते वो दिखे बिना रह ही नहीं सकता, प्रकाश दिखे बिना कैसे रहेगा बताइए, शब्द है वो कान में आए बिना कैसे रहेगा, स्वाद है उस जीभ में आए बिना कैसे रहेगा, त्वचा है उसी मन में ये कठोर है ये नरम, ऐसा आए बिना कैसे रहेगा, ये तो प्रकाश है, संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योति है वो, सब प्रकाशों का भी प्रकाशक है, उसका प्रकाशक कोई नहीं है, सबका प्रकाश है वो परमात्मा, उस प्रकाश के अंदर अनंत सृष्टि दिखती है, आप ध्यान दो, बहुत नजीक बताता हूँ परमात्मा से, नजीक कोई चीज है ही नहीं, उतना सुगम कोई काम हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, कोई सुगम हो सकता नहीं, इतना स्वभाव इतना स्वाभाविक ही होता, तो उधर ध्यान दें आप लोग, अब मैं बात की तो ध्यान दे भाई और बहन लोग भी ख्याल के इधर, एक आदमी के पोता पैदा हुआ और एक आदमी मद्रास गया, बेटा मर गया, बेटा मर गया पोता पैदा हुआ, कितना अंतर है, बड़ा भारी अंतर है, बेटा मर गया और पोता हो गया, आनंद हो गया, ख्याल करना आप दोनों बातों पर, बड़ा बड़ा अंतर है, परंतु जानना है कि बेटा मर गया पोता पैदा हो गया, ये जो ज्ञान हुआ ज्ञान में क्या फर्क है, ज्ञान के विषय में तो फर्क है, एक में मृत्यु का ज्ञान है, एक में जन्म का ज्ञान है, पर ज्ञान मात्र हो तो क्या फर्क हुआ उसमें, एक के नफा हुआ एक के नुकसान हुआ, तो नुकसान का ज्ञान नफे का ज्ञान ज्ञान में क्या फर्क है, ख्याल आया, जो जानना मात्र है उसमें क्या, जैसे वो प्रकाश है इसमें ये रंग सफेद है ये काला है, ये काला और सफेद में फर्क है, आंख में क्या फर्क है, अब तो वही है काला को देखने वाली वही है, सफेद को देखने वाली वही है, आंख दूसरी है, ऐसे ज्ञान में फर्क है, ज्ञान के विषय में किसका ज्ञान है उसमें फर्क है, पर जानने मात्र में क्या फर्क है, नफा और नुकसान, जन्म और मृत्यु, संयोग और वियोग, आना और जाना, लाभ और हानि, ये दो दो चीजें हैं, ये दो दो चीजें अलग अलग है, पर इनका ज्ञान है उसमें क्या फर्क है, किसी समझ में आई तो बोलो भाई, ठीक दिख रहा है, तो जो ज्ञान है इस ज्ञान के अंतर्गत है, अच्छा मंदा हानि लाभ सब ज्ञान के अंतर्गत, ज्ञान में न हानि है न लाभ है, प्रकाश में शरीर दिखते हैं, ये शरीर चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे ईंट हो, पत्थर हो, सोना हो, चाहे दीवार हो, चाहे वृक्ष हो, इनमें आपस में फर्क है, प्रकाश में क्या फर्क है, ऐसे जानना मात्र उसमें फर्क नहीं है, जानने में आने वाली चीजों में फर्क है, वो जानना मात्र ही परमात्मा का स्वरूप है, उसमें फर्क नहीं था, ये संसार का स्वरूप है, जो बदलने वाला नष्ट होने वाला है, जानने का विनाश होता ही नहीं, वो है जो गति रहता है, अब इस शिक्षा में जो आसक्ति है, आपके मन में धन का महत्व बैठा हुआ है, भोगों का सुख का महत्व बैठा हुआ है, वो आपको इस तरफ दृष्टि डालने देता नहीं, ये बाधा लग रही है। अभी कोई जिज्ञासु हो इस बात की, तड़फन हो मैं जानू, तो मेरी इन बातें निहाल जाएगा, इतनी बात से क्या किया आपने, कितनी सुगम कितनी सरल बात। ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम, जो सबसे पहले दिखता है, ये नफा और नुकसान तो पीछे आते हैं, ज्ञान पहले है, और नफा नुकसान में भी है, यदि के बाद भी है, ज्ञान में क्या फर्क पड़ा, उसमें नाश होते नहीं, ज्ञान है जो गति है। आंख से आप मनुष्य को देखो चाहे दीवार को देखो, दीवार और मनुष्य में फर्क है, आंख में क्या फर्क हुआ, आंख देखने में क्या फर्क हुआ, ऐसे वो सबकी ज्योति है, सबका प्रकाशक है। ज्योतिष नाम विदत ज्योति तमसा परमुच्य थे, तम उनसे परे ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विशतम, सबके हृदय में विराजमान है, कितना प्रत्यक्ष है बताओ। अब जो महत्व दे दिया नाशवान का आपने, रुपया बड़ी भारी चीज है, अब उस चीज होगा रुपये जैसी रद्दी चीज कोई नहीं है संसार में, रेत है पेशाब है टट्टी है, वो भी काम आने वाली, रुपया काम आने वाला नहीं है, पर रुपये का इतना महत्व बढ़ गया बुद्धि भ्रष्ट हो गई। रुपये खाने में आ रहे नहीं, कब साबने में आ रहे नहीं, पीने में आते नहीं, बिछाने में आते नहीं, ओढ़ने में आता नहीं, सवारी में आता नहीं, दवाई में आता नहीं, वो रुपये द्वारा चीजें आती है, तो रुपया तो द्वार है, चीजें खुद काम आती है, और काम खुद आता है, टट्टी फिरता है तो वो सुअर के खुद टट्टी काम आती है, रुपया किसके काम आता है, कागज किसके काम आता है वो, तो आग लगाओ जल जाएगा, कोई काम की चीज नहीं है। आपने महत्व उसको दे दिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब तब तो कैसे समझाए, सबसे रद्दी चीज को सबसे ऊंची समझाए, ये बुद्धि में पत्थर पड़ गया, अब कैसे समझे उस तत्व को। रुपया खुद इतनी ऊंची ऊंची चीज नहीं है, वस्तुओं के खरीदने बिक्री करने में विनिमय करने में रुपया बड़ी चीज काम की है, पर खुद ही रुपया क्या काम आता है। एक आदमी को रुपयों का लोभ है, उसको सोना चांदी रतन रुपये पैसे खूब इकट्ठा करके चबूतरे पर बैठा दो, अन्न बंद कर दो, जल बंद कर दो, कपड़ा बंद कर दो, मकान बंद कर दो, कितना जिएगा। और हमारे को पैसा सुपने में मत देखो, आप सोने ही मत दो, रोटी दे जाओ, कपड़ा दे जाओ, जल पिला दे जाओ, क्या मर जाएंगे हम। तो आप रोटी कपड़ा अन्न जल से जीते हैं, रुपये से नहीं जीते हैं, पर महत्व रुपये का इतना हुआ है, भगत पर रोटी बेच देंगे रुपया ले लो। आप ख्याल नहीं करते, कृपा करो भगवानाथ, ध्यान दो इन बातों पर, वो परमात्मा तत्व ऐसा विलक्षण सबको नित्य निरंतर प्राप्त है, उस तरफ आप ख्याल नहीं करते, क्यों नहीं ख्याल करते, ख्याल करते ये भगत नहीं है, आपने रद्दी चीजों में ख्याल लगा दिया, सब किसी बुद्धि वहां लगा दी, भ्रष्ट होगी बुद्धि। अब वो कैसे लगे, 100 पैसा किसी के पास में हो, 10 कहीं रह गया, 15 कहीं रख दिया, 2 पैसा कहीं रख दिया, अब आपके पास कुछ नहीं रहा, यार पैसे 100 के 100 आपके पास है, पर रख दिए, कुछ स्त्री में रख दिया, कुछ पुत्र में रख दिया भाव, कुछ धन में रख दिया, कुछ घर में रख दिया, कुछ मान आदर सदार में दिया, कुछ आराम में रख दिया, ऐसे अलग अलग करके पूंजी सब नष्ट कर दिया आपने, कई दिन वितरण कर दी, रुपया पूरा का पूरा आपके पास है, तब तो ज्ञान हो जाए, वो ज्ञान आपके पास है, कहीं किसी में आसक्ति हो गई, प्रेम हो गया, मन का खिंचाव हुआ, वह मन आपने लग दिया, वो पूंजी वहां खर्च हो गई, अब परमात्मा कैसे पकड़े उनको, रुपया कैसे पूरा का पूरा पास है, पर तो रख दिया अलग अलग, कुछ स्त्री में हो गया, कुछ पुत्र में हो गया, कुछ धन में हो गया, कुछ आराम में हो गया, कुछ बड़ाई में हो गया, कुछ मान सत्कार में हो गया, कुछ खाने पीने में हो गया, इधर जो मन का आकर्षण हो गया, अब वो खर्च हो गया इधर। तो परमात्मा तत्व सबके लिए सदा जो का त्यों मौजूद है, सबके लिए सदा सर्वदा रात दिन उसमें नहीं फर्क पड़ता है, उस परमात्मा ज्ञान में क्या फर्क पड़ा, बताओ रात दिन में क्या फर्क पड़े, ऐसा परमात्म तत्व है सबको नित्य निरंतर प्राप्त है। पर आपकी दृष्टि तो अनित्य की तरफ ही है, जानते हो ये चीजें देने वाली। आज से 100 वर्ष पहले इस शरीर में कोई शरीर था, सब बोली, और 100 वर्ष के बाद ये रह गए तो नहीं है उसमें। आप पकड़ लिया शरीर है, ऐसे मकान है, वो इतना है, ये मकान भी 1000 वर्ष पहले था, 100 वर्ष पहले था क्या, 10000 वर्ष पहले, 1000000 वर्ष पहले, बिल्कुल नहीं था, 1000000 वर्ष पहले कुछ नहीं रहेगा। तो नहीं था नहीं रहेगा, उसमें महत्व बुद्धि हो गई कि बड़ी भाई बढ़िया चीज है ये है, इस वास्ते वास्तविक तत्व से वंचित हो गए। बहुत सुगम है, कठिनता है नहीं इसमें, परंतु पुस्तकों में यार कठिन है साहब, पुस्तकों में दोनों बातें आती है। महाराष्ट्र में पंढरपुर में हमारा चातुर्मास हुआ तो मराठी में जानता नहीं, अब जो एकनाथ जी महाराज है, तुकाराम जी महाराज है, ज्ञानेश्वर जी है, ये सब मराठी के भाषा में बोलने वाले हुए, मराठी में उनकी वाणी है, हम तो समझते नहीं। तो एक आदमी ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, सब ने कहा वो कठिन नहीं है। मैंने कहा ये एकनाथ जी महाराज है, तुकाराम जी महाराज है, ज्ञानेश्वर जी है, आज भी संत हुए हैं, इन पर मेरी श्रद्धा है कि संत महात्मा ऊंचे दर्जे के हुए हैं, तब तो जानने वाले हुए हैं, उनकी वाणी में सुख में ये बात आ ही जाएगी। मैं नहीं जानता हूँ, बस जोर से कहता हूँ उनकी वाणी में आ गई वो चीज, कैसे कह देंगे कठिन है। तो ये बोला वो अभंग मेरे को याद नहीं है, हाँ ऐसा आया है कि परमात्मा प्राप्त सुगम है, कैसे नहीं कहेगा, जो जानकार आदमी कैसे कह सकते कठिन है, कठिन वो कैसे तो अनजान है वे कह सकते हैं। मेरी धारणा है, मेरी भावना है कि संत महात्मा ये तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं। ये ज्ञानेश्वर जी महाराज मामूली ये साधु संत की तरह नहीं थे, ऐसे ऊंचे हुए हैं, तो उनकी वाणी में आएगी ये बात, जोर से कह दिया बोल के हाँ आती है ऐसी बात, कैसे नहीं आएगी, जो वास्तव में जानकार है, पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अरट की ढूंढे एक ईट और, अरट होता है ना अरट जानते हो, घड़ी बंदी रहती है ऊपर जागरी के मार में रोता, फिर पानी लेकर के ऊंची आती है, फिर उठती है, तो घड़ी तो अलग अलग माला होती है लंबी चौड़ी और ऊंची से ऊंची होती है, पर ढूंढती एक ही जगह आकर के जमी, तो पहुंचे पहुंचे एक मत और अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अरट की ढुए एक ही ठोर, वो पहुंच जाते वो सब कह रहे अरे ये तो बहुत सीधी है, आश्चर्य आता है ये तो इतनी सीधी, हमने जरा बड़ी भारी है वो चीज, अरे ये तो इतनी सीधी है इतनी सरल है। तो वे पुरुष कहेंगे कभी नहीं कह सकते कि कठिनता भी कहेंगे, वो दोनों कहेंगे कठिनता कहेंगे लोगों की दृष्टि से, सुगमता कहेंगे अपनी दृष्टि से। शेठ जी श्री जयदादी ने कहा कि मेरे समझ में नहीं आती कठिनता इसमें क्या है, पर लोगों पर आजमाइश किया तो मालूम है कठिन है, हमें मालूम ही नहीं है कठिन कैसे है, ये तत्व तो मेरे सुगम ही थी, इसमें कठिनता क्या है, तो लोगों पर आजमाइश किया करवा देखा तुम समझ नहीं सके, तो फिर मैंने माला कठिन है, नहीं तो मेरी जस्ती नहीं कठिन क्या है, इसमें ये तो है ही वही कठिन क्या है, अब ये मकान है इसमें क्या कठिनता हुई। जैसे मैंने वो गंगा जी किनारे बैठे हैं, गंगा जी में शब्द हो रहा रा 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 शब्द हो रहा है, परंतु दृष्टि नहीं से बिल्कुल सुनता नहीं, कान भी आपके तैयार है शब्द भी तैयार, तो आप दृष्टि नहीं दे तो नहीं सुनता, अब दृष्टि दे अब बंद नहीं होता वो सुनता है, बंद ही नहीं दो अब बंद ही नहीं दो सुनता है, क्या ख्याल हो गया, इस तरह से उस परमात्मा की तरफ ख्याल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि नाशवान को महत्व दिया, ये बात है, ये बाधा दया से ही बात हुई है, अरे वो बाधा शरण ये नाथ में आपके शरणों सुने मेरे निर्बल के बल राम, मेरे कोई बल नहीं, मैं उसको नहीं जान सकता, उसी कृपा से सो जाने दे देव जनाई, उसे तो निराश तो हो नहीं और अपने बल से निराश हो जाए अपना शक्ति है नहीं, तत्काल प्राप्ति होती। अब इसमें किसी की शंका हो तो बोलो, कोई संदेह हो तो बोलो,
जी
छुटकारे उपाय के दूसरों को सुख दो। ये अटकल बहुत ही बढ़िया काम की है कि हर एक विषय में दूसरे को सुख दो, औरों को आराम दो, तो आपका आराम छूटेगा। मैं आराम ले लू, मैं सुख ले लू, मेरे रुपये मिल जाए, मेरे को भोग मिल जाए, मेरे को आदर मिल जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, ये बाधा है। औरों की प्रशंसा हो जाए, औरों को सुख मिल जाए, औरों का कल्याण हो जाए, औरों को आराम मिल जाए, अगर आपकी वृत्ति हो जाए तो प्राप्त हो जाए, लो सुख छूट जाएगा। बहुत सुविधा से करके देखो आप, बहना हुई आपस में इन सबको सुख मिले। मैं परिश्रम करूं सब दूसरों को सुख मिले, भाइयों में विस्तृत से मैं सोचू आराम दूसरों को मिले, मान दूसरों को मिले, बढ़ाई दूसरों की हो, कल्याण दूसरों का हो, उद्धार दूसरों का हो, भगवत प्राप्ति सबको हो, ये उदार भाव हुआ प्रमाण प्राप्ति हुई, ये आसक्ति मिटेगी। एक साधु मिले थे, उन्होंने कहा देख ध्यान देना भाई, मेरा विवाह हुआ उसके बाद मैं बाजार में गया तो आम आए थे, बिल्कुल पहले ही पहल पहले आम नहीं थे, वो आम आए तो आम मिला, शायद बगीचे में मिला, बहुत बढ़िया आम था, तो मेरे को मिला, मैं ले गया जाकर मेरी स्त्री को दिया, तो स्त्री का मोह ये मोह तो दूर, वो तो दूर है, ये नजीक है ना, परंतु स्त्री पर मेरी आसक्ति थी, खिंचाव, तो बढ़िया चीज मिला जाकर उसको दी, तो मालूम है दूसरों के देने से अपने खाने की रुचि मिटती है, ये उपराड़ी मिली तब तुम ठीक है, तो दूसरों को सुख देने से अपने शुभ भोग की इच्छा मिटती है। माताओं को हमारा आपका पालन किया माँ की गोद में, तो माँ ने कष्ट उठा लिया, हमारे को पाला है, बच्चे को कितना पालन करती है, गाड़ी में भीड़ है जिसमें बैठने की जगह नहीं है, खड़े है आदमी, ऐसी जगह बच्चे को सुला लेगी, बच्चे को सुख हो जाए तो अपना सुख भूल जाती है वो, अपना सुख आप लेते हो ये भूल है महाराज, सीधी बात है, दूसरों को सुख हो, सर्वे भवन तो सुखिना सर्वे संत हो, ये आपके हो जाए भीतर में, तो देखो आप ये मोह मिट जाएगा, जहां होता है मोह मिट जाए, पति प्रथा है वो पति को सुख देना चाहती है, आप सुख देना नहीं चाहती, असली पति प्रथा अपना सुख नहीं चाहती, अपना आराम नहीं चाहती, अपना भोग नहीं चाहती, केवल इनको सुख कैसे हो। आप समझो कोई संत का सेवक है, ये संत महात्मा कैसे राजी रहे, इनकी सेवा कैसे हो जाए, इनको सुख कैसे मिले, कैसे आराम पहुंचे, वो खुद आराम नहीं ले सकता, ये बात समझ में आती है कि नहीं। ऐसे सबका सुख सर्वे बहुत सब सुखी हो जाए, हो जाती तब तो मिल जाएगा, मेरे को सुख हो जाए बस आड़ लगी ताल आ गया जयराम जी, अब नहीं मिलेगी। अरे घर में कैसे वैसे हो जाए, अब शुरू कर दो, अपने से शुरू कर दो, और आराम देना है तो सुख सुख देना है, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भतीजा भुजाई इनको आराम मिले, ये आराम से रहे, ये आराम सुख से रहे, आदर इनका हो, प्रशंसा इनकी हो, आराम इनको मिले, लाभ इनको मिले, ऐसा आप कर दो कर दो, तो आप आपको ये आराम के आप आराम छूटेगी, अपना सुख छूटेगा, उन सुख देने की इच्छा हो केवल, लेना नहीं है हमें, रोटी बना कर देखो खा लो कोई बात नहीं है, परंतु आनंद तो इनको मिले, सुख तो इनको मिले, रोटी बना कर देखो खा लो कोई बात नहीं है, परंतु आनंद तो इनको मिले, सुख तो इनको मिले, और वो भी खाओ उनकी प्रसन्नता के लिए। एक संत से पूछा कि बढ़िया भोजन कौन सा होता है, तो बढ़िया भोजन वो होता है जो खिलाने वाले को आनंद ज्यादा आवे खाने वाले की अपेक्षा, वो भोजन बढ़िया होता है, खाने वाले खुशी हो खिलाने वाले को मध्य दे देगा, और खिलाने वाले साथ आने का आप बताइए कैसे, खाने वाले कहते एक दिन निकल जाते हैं बात है, वो सबसे रद्दी भोजन होता है, वो बात है हरेक काम ऐसे है, तुम भी सेवा करे पर लेने की इच्छा रहती है कि मैं सेवा करूँ तो मेरी सेवा करेंगे, ये व्यापार होता है, सेवा ही करनी है, सेवा सुख लेना है ही नहीं तब होता है, बाहर हो भीतर कहीं हो कुटुंब हो चाहे दूसरे हो, सेवा करें सुख लेने के लिए, बच्चे गेंद फेंकते हैं ना तो पीछे आने के लिए फेंकते हैं, फेंकने नहीं फेंकते हैं, इसे सुख देते हैं सुख लेने के लिए, खोटी नींद तो लेने की रहती है ना, ये बात आती थी। क्रोध नहीं आएगा इसे, दूसरे को शुभ शुभ क्रोध नहीं आएगा। अपने बात कटे तो क्रोध आता है, हमारे अभिमान में टक्कर लगे तो क्रोध आता है, हमारे स्वार्थ में शुभ पता लगे तो क्रोध आता है। ये क्रोध की जड़ यही है, मैं गुरु मेरे को कह दिया जाना है तो यहाँ हूँ मैं, मेरे इतना रुपये मिलते थे तुमने बात लगा दी, क्रोध आएगा स्वार्थ नहीं आता, गिरता को क्रोध नहीं आएगा। नहीं, पिता तो पहले हक लगता है ना, पिता का हक लगता है, पिता से शरीर पाया है, विद्या पाई है, सहायता पाई है, आपने पिता से बहुत लिया है तो पिता का कर्जा है, पहले कर्जा चुकाओ पीछे दान करो। कर्जा तो चुकाए नहीं, दान करना शुरू कर दिया। अरे मांगते हैं तो मांगते तो अनुचित नहीं है, ये आजकल छोरों में अभिमान होता है, तो स्वार्थी है, तुम परामर्श कैसे हुए, कर्जा चुकाओ उनका, उनकी प्रसन्नता लो, आपकी प्रसन्नता कितनी ली है उन्होंने, बचपन में आप राजी थे वैसे राजी रहते थे वो। एक कहानी आती है, देरी होगी समय तो हो गया परंतु अब आज आज ये बचाने वाले इस वास्ते और कह देते हैं, जल्दी जल्दी है ही नहीं अभी, हमारे भी देरी है, आप थोड़ी देरी होगा, हम तो मुफ्त के आदमी है, हमें क्या देरी होगी, आपकी देरी हो, काम धंधा है, घर है, हम घर है ना बाहर कुछ नहीं। जयराम जी, एक लड़का था, वो हो गए जवान, पिता हो गए बूढ़े, तो उसके मन था कि मैं पिताजी की सेवा करता हूँ, ऐसे उसका मन था। तो एक दिन पिताजी ने कहा, एक सामने आई है, बेटा क्या बोलता है, कौआ है हमारा, कौआ है, कौआ बेटा क्या बोलता है, कौआ है, मारो कागलो कागलो, बेटा क्या है, सुन लिया आपको पता नहीं है, लगा अच्छा पुरानी बही ला, तो पुरानी बही मंगाई है, जब ये बच्चा था तेने पूछा पिताजी क्या है, मैंने कहा कौआ है, लिख दिया, तेने पूछा कौआ है, लिख दिया, देख कितनी बार कहा मैंने, मैं तो दो तीन चार बार में उठा गया, बच्चा कहता क्या है, कौआ है, पिताजी क्या है, कौआ है, कहता गया 10-15-20-50 बार, अरे कौआ कह दे गए, अरे पिताजी सेवा करता है तू, इतना कर्जा पिता का है वो तो चुकाया ही नहीं, बोलो भाई उपकार करने के लिए, सेवा करने के लिए, दुनिया में माँ है बाप है, इनका खर्चा कितना है वो चुकाओ भाई, तो औरों की सेवा करो, उनसे भी प्रार्थना करो कि बेटाजी आपकी तो कर दे, मैं औरों की सेवा करूँ, देखो बीमार है वो, निर्धन है वो, दुखी है, सेवा करो, आगे मांगो उसे, ना करो खूब गुस्सा, कर्जा चुकाओ, निर्दान करने को लगे, निर्दान क्या काम है भाई, जानने मानने बड़ा बड़ा अंतर है, पर मानना जानने से बड़ा होता है, कहीं मानने से जानना बढ़िया होता है, अंतर जानना तो साफ रहना है। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा कि सत्य में और झूठ में कितना अंतर है, कि चार अंगुल का, चार अंगुल कैसे है, ये देखो आंख के कान के बीच चार अंगुल की स्थिति है, सुना हुआ झूठा, देखा हुआ सच, चार उंगल फर्क है, तो चार उंगल का फर्क है, देखना जानना और मांगना, मानना तो सुन करके मानते हैं, आंख करके देखते हैं, तो देखना सुनने में फर्क है, मानने में श्रद्धा में, जानना ठीक जानना पर संदेह नहीं रहेगा, मानने पर संदेह रहेगा, और मानने परमात्मा को तो मानना इतना तेज हो जाएगा, तुम्हारा जानने सबसे तेज हो जाएगा, तो कहीं माना तेज होता है, कहीं जानना तेज होता है। माँ का ऋण कोई उतार सकता नहीं, माँ ने जितना कष्ट सहा है उतना कष्ट आप हम नहीं सह सकते। हमारे पालन करने में माँ ने कितनी तकलीफ उठाई है, ये तो उसकी उदारता है, परंतु उतनी सेवा कर सकते हैं आप? और भोजन करा अगर खुश हो जाए माँ, बोलो आपको तो भोजन मिले, माँ खुश हो जाती, खा ले बेटा इतना और खा ले और खा ले, माँ खुश हो जाए, ये माँ की सेवा है। माँ की प्रसन्नता लो, पिताजी की प्रसन्नता लो, एक में लो घर में बड़ों की प्रसन्नता लो, ये बात ऋण तो रहेगा, प्रसन्नता से माफ हो जाए, खुश हो जाते, माफ हो जाता, सुखा नहीं सकते। महाराज जरूरत नहीं है, राम 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 राम, भगवान ने सेवा के लिए भगवान ने सामग्री दे रखी है, मन दिया है, जबान दी है, नेत्र दिए, राम 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 राम, माला से तो दो नंबर का होगा, बिना माला एक नंबर का होगा। मना कौन करता है, रुपया खुद काम आता है क्या? मैंने कह चुका पहले ही, वस्तुओं के द्वारा काम आता है रुपया, मैंने कहने की कमी नहीं रखी है। मैं मना करता ही नहीं रुपया, अब मेरे तत्व समझते नहीं, मेरे पास आशय है, रुपये की बहुत जरूरत है, बड़ी भारी आवश्यकता है, मैं मानता हूँ इस बात को, पर खुद रुपया काम आता है क्या? खुद चीज रुपया देकर लेना चाहते हैं दूटी क्यों, तो रुपया बढ़िया चीज है, मतलब माला पुस्तक भी मत लो, अन्न भी मत लो, पानी भी मत पियो, कपड़ा भी मत पहनो, मकान भी मत लो, रुपया रखो पूरा, बात समझो, मेरे कहने का आशय समझो, मैं रुपयों की निंदा नहीं करता हूँ, मैं तत्व बताना चाहता हूँ, सार तत्व क्या है बताना चाहता हूँ। रुपया वस्तुओं के द्वारा काम आता है, स्वयं काम नहीं आती, रोटी स्वयं काम आती है, जल स्वयं काम आता है, रुपया स्वयं काम नहीं आता है, वस्तुओं के द्वारा काम आता है, तो एक पीढ़ी दूर हुआ ना रुपया, अन्न जल वस्त्र नजीक हुआ, अन्न जल वस्त्र मकान औषध ये नजीक हुए, इनसे यात्रा दूर है, और आवश्यकता नहीं मानता मैं, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता जूती की भी है, पर जूती को आदर नहीं है क्या दादा? जूती की शुद्ध है तो नाराज हो जाओ, आवश्यक नहीं है, डर दो थे मतलब चले चलती लिए हुए उठाए हुए चलती है, जूती कम काम की है क्या? पर किसी को जूता देखा हुआ तो भाई चीज है अपनी अपनी जगह, बिना काम की सुनाई गया था। दान करने से, दूसरों को देने से, भाव भाव सेवा से, सेवा भाव उतर जाएगी, सब उसको कैसे पहुंचे, मैं कह चुका हूँ तो, ये माता हमारा पालन करा है, उसमें अपना सुख देखती थी क्या? ये अपना सुख देखो तो पालन नहीं कर सकती, आजकल की माताएं नहीं रही है, आज की तो भोग की पुतली है, ये बेटा नहीं चाहती, बेटा पैदा ना हो, मां हत्या करती है, माँ है ये, वो माँ नहीं है, माँ वो है जो बेटे का सुख चाहे, पुत्र चाहे, परिवार हो हमारा, बंद करो मेरा बंद करो, महान निर्दयता है, राक्षस है, असुर है, राक्षस नहीं है, राक्षस नहीं है, माँ नहीं है, माँ का भाव होता है ये, यहाँ की एक बात याद आ गई, लोगों को बुरी लगेगी शायद ऐसी लगेगी, यहाँ हमारे भाई है ना, यहाँ तो साधु भोजन करते थे, और ना माता जी ना माई जी ने कहा, और कहा उत्तम खाना पड़ेगा, माँ का काम है, तो माँ क्यों कहा, अब लो खाओ ये मिठाई लो, ये मिठाई लो, ये दूध पियो, तुमने माँ क्यों कहा, हमारे को माँ का काम कि ना माई ना माई, अरे माई क्या तो खान में अधिकार है, मैं खिलाऊंगी। माई क्यों कहा तुमने? माँ कहा तो खिलाऊंगी। माँ का स्वभाव है चुप हो गए। अब साधु दियो के माई ठीक है, माई है तुम खाओ, खाना पड़ेगा। माई क्यों कहा? माँ का नाम खिलाने का है, खाना पड़ेगा तुम्हें। बोलो तुमने माँ क्यों कहा? अब देती है तो माँ ही कहे, क्या कहे बताओ? लेने वाली माँ ही होती है, बदल कराने वाली। तो ये माँ का लक्षण है, संतान नहीं चाहती माँ थोड़ी है, वो माँ नहीं है, राक्षसनी है, कोई असुर है, कोई सर्वणी पुत्रादीनी सर्वणी। सिद्धांत को उदाहरण आता है, पुत्रादीनी सर्वणी, पुत्र को खा जाए। 108 बच्चे होते हैं अंडे सर्प के, वो बैठ गया, वो बैठ जाती है बीच में है, वही जो बढ़ना निकल जाता है, 12 वो निकल जाता है बीच में, सौ खा जाती है अपने अंडो अपने बच्चों को खा जाती, बाहर निकल गया, निकल गया। तो सर्पणी है जो बच्चों को खा जाए, पैदा ही नहीं करे, गर्भपात कर दे, बच्चों को पैदा नहीं करे, राक्षसनी है। उसके मुंह ऐसे पाप लगे, मैं तो कहीं जाता हूँ व्याख्यान देता हूँ कि जिस घर में गर्भपात किया उस घर का अन्न हमें मत देना, उस घर का पानी मत पिलाना, महान हत्या है ये, पापम ब्रह्म हत्या, दुगुण गर्भपात ने ब्रह्म हत्या से दुगुणा पाप होता गर्भपात ना, प्रायश्चित मत से पारा स्मृति मिलेगा। ऐसा बड़ा भारी घोर पाप कर दिए, कोई माँ कहना नहीं, वो माँ कहना लायक नहीं है, माँ होना बंद हो गया, मैं माँ नहीं बने ना, बनना नहीं चाहती माँ। वो माँ कहाँ है? स्त्री का कोई दर्जा नहीं ऊंचा, माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक, पिता से कहते 10 गुना अधिक माँ का दर्जा। मैं माँ बनती ही नहीं तो भोगों की कीड़ा है कुछ नहीं, जूती है एक पहनने की। अंग्रेजों के राज में गर्भपात कर 7 वर्ष कैद होती थी, आज विधान हो गया, ये दशा है, ये स्वराज मिला है, ये स्वराज है। मन हे नाथ, हे नाथ, सब सुन गया, अहं पास सर्व पाप है विमोक्ष ईशा, रात सुनाया था ना। काम पर विजय होती भाई, भगवान को प्रार्थ करो, एक भगवान को प्रार्थ सब काम ठीक होता है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल काल में वह पहुंच झट ही जाए। आर्त होकर दुखी होकर, दुखी होकर भगवान में विश्वास करता है वो भक्त हो जाएगा, संत हो जाएगा। मैं दो काम करो तो दूर कर सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं है, विश्वास हे नाथ हे प्रभु आप करो, ऐसा हो जाए तो संत हो जाओ, इतना सब काम हो सब दूर हो जाएगी। अपार असीम बल है भगवान का, कोई लड़ना चाहे वो सब लगेगा, पूछे साधु और गृहस्थी और छोटा और बड़ा और पापी और पुण्यात्मा और पढ़ा और अपढ़ हो, कोई क्यों न हो, हे प्रभु ऐसा काम है सबके लिए भगवान है। चाहे आप ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, अरे
कहते हैं योग, योग बड़ा है कि नाम,
नाम बड़ा गया। योग तो आपके मेहनत है, काम जो नाम है, पुकार, पुकार से जो काम आता है योग से थोड़ी जाएगा काम, योग में शक्ति प्राप्त होगी।
एक बहन महाराज जी माता जी कुछ
हाँ पूछो भाई,
किसके लिए, बेटे के लिए या माँ के लिए? आपने कहा ना कि बेटे को चाहिए कि माँ बाप की सेवा करे और बेटा पास में वो कहीं और रहे, बाहर गया हुआ हो, तो अब माँ, माँ के लिए आप ऐसी बात बताइए कि बेटे की सेवा की आशा न रहे, कि बस वो एक राम ही है, एक भगवान ही है, उसी के भजन में लग जाए, नहीं तो ये सुनने से मन में ये आशा रहती है कि बेटे को सेवा करनी चाहिए, वो सेवा करे।
बेटे की सेवा बेटे का कर्तव्य है, माँ का कर्तव्य नहीं है। सेवा चाहना माँ का कर्तव्य नहीं है। माँ का तो बेटा हो गया, पढ़ा दिया, ब्याह कर दिया, अब बना बनी पढ़ा लो। ये माँ का काम। देखो आजकल बड़ी कृपा है भगवान की, बेटा कहना नहीं मानता है तो मुंह आप ही छूटेगा। आज बड़ी कृपा है, माँ है उसको चाहिए, उसका भला चाहे, सदा कल्याण हो, कहीं रहे कैसे ही रहे उसका कल्याण हो, उसका भला हो, यही चाहती रहते कल्याण हो जाएगा माँ का। सेवा कर रहे, सेवा की जरूरत नहीं, सेवा लड़ी नहीं है उससे, हमें तो उसकी सेवा करनी है। ब्याह दिया, पैदा कर दिया, अब पढ़ा दिया, अब कर दिया, बस ठीक है, अपना तो ऋण पूरा हो गया, पढ़ा लिखा त्यार शुद्ध करके ब्याह पढ़ना कर दिया, अब छुट्टी दे दो, अब बेटा तुम जाओ मौज करो। ये बेटा का कर्तव्य है माँ की सेवा करे, माँ का कर्तव्य पूरा हो गया।
होती है आपकी तो कल तीसरे दिनों की प्रार्थना से वंचित रखा गया, इसमें क्या हेतु है?
हेतु बताऊंगा नहीं तो मैं तो मेरे कसूर मान लूंगा, वो हमारे कसूर है, कह दूंगा। आपने हेतु पूछा तो बताऊंगा। 5 बजे बहुत रात रहती है, हम जहाँ कहीं रहते हैं उत्सव करते हैं और माताओं को रात्रि में फिरना हमें अच्छा नहीं लगता है। अब 12 बजे सत्संग में गए थे, बहाना हो तो हम बहाना नहीं चाहते, भीतरी वादी है हमारी।
हाथ को देखने के लिए प्रकाश के माध्यम की आवश्यकता पड़ी, जानने के लिए किसी साधन की आवश्यकता पड़ी, जानने के लिए किसी और,
जानने के लिए और को जलाने की हुई ना, जानने के लिए बुद्धि आपके पास है, उसमें इशारा कोई कर दे इशारा, वो यह गुरु की ये यहाँ गुरु के काम है, ये काम गुरु का है। गुरु से कहीं नहीं, गुकारस अंधकारस है, भुकारस निरोध कृत, जो अंधकार को दूर कर दे वो गुरु, भीतर आपके अंधकार है वो दूर प्रकाश कर दे भीतर, वो गुरु होता है। तो गुरु से मिलता है, भगवान से मिलता है, शास्त्रों से मिलता है, प्रकाश मिलता है। मैंने इतनी बातें कही कि प्रकाश नहीं मिला है, वो प्रकाश आपका ही है, हमारा नहीं है। मैंने इशारा किया ये बात है, ये प्रकाश तो सामान्य है, इस तरह दृष्टि करे, केवल दृष्टि काम आपका, प्रकाश आप में खुद में बुद्धि है, वो केवल उसको जागृत कर देना, ये गुरु का काम है।
पिता गुरु हो सकते हैं,
पिता हो सकते, माँ गुरु है, सबसे पहला गुरु माँ है, सबसे पहला माँ गुरु है, ये पिता भी गुरु है, माँ सबसे पहला गुरु। खाना पीना सिखाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, बैठना सिखाती है, बैठना सिखाती है, माँ अंगुली पकड़ के चलना सिखाती है। आपकी ऐसी दशा थी, आज बातें बनाते हैं हम, ये थी और थी की दशा, माँ ने सिखाया, खाना सिखाया, खावा दियो गयो मुंह यूं कर, हाथ यूं कर देगा, माँ कह रही क्या कर रहा है, टट्टी पेशाब फिर अंगली पर टट्टी में पेशाब नहीं करे, अरे क्या करता है, ये किसने सिखाया है, माँ ने सिखाया। तो सबसे पहला गुरु माँ है, इस वास्ते प्रसिद्ध मातृदेव भाव, पितृदेव भाव, आचार्य देव भाव, माँ का पहला नाम है, सीता राम राधे श्याम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण, फिर नाम माँ का आता है, पहले हम चिंतन करते हैं तो माँ का दर्जा ऊंचा है।